नमस्ते फ्रेंड्स, ओशो रेडियो के द्वारा हम सब तक पहुंच रहे ओशो के प्रेम, आनंद और उत्सव के जगत में हम सबका हार्दिक स्वागत। आज का हिंदी डिस्कोर्स कृष्ण स्मृति वॉल्यूम नंबर 7 से लिया गया है, जिसमें ओशो हमें कृष्ण के उत्सव में जीवन के प्रति जगा रहे हैं और किस तरह इस संसार में जीवन को उत्सव में हम जी सकते हैं, इसकी और इशारा है।
पहली बात, जीवन एक काम है या उत्सव? अगर जीवन एक काम है तो बोझ हो जाएगा, अगर जीवन एक काम है तो कर्तव्य हो जाएगा, अगर जीवन एक काम है तो हम उसे ढोएंगे और किसी तरह निपटा देंगे। कृष्ण जीवन को काम की तरह नहीं, उत्सव की तरह, एक फेस्टिविटी की तरह लेते, महोत्सव है जीवन, एक आनंद का उत्सव है, काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि उत्सव की तरह लेते हैं तो काम नहीं करते, काम तो करते हैं, लेकिन काम उत्सव के रंग में रंग जाता है। काम नृत्य संगीत में डूब जाता है। निश्चित ही बहुत काम ना हो पाएगा इस भांति, थोड़ा ही हो पाएगा, क्वांटिटी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन क्वालिटी का कोई हिसाब नहीं है, परिमाण तो कम होगा, मात्रा कम होगी, लेकिन गुण बहुत गहरा हो जाए। कभी आपने सोचा कि काम वाले लोगों ने, जो हर चीज को काम में बदल देते हैं, जिंदगी को कैसा तनाव से भर दिया? जिंदगी की सारी एंजाइटी, सारी चिंता ये अति कामवादी लोगों की उपज है। वे कहते हैं करो, एकदम करते रहो, करो या मरो, उनका नारा ये डू आर डाई, जिंदा हो तो करो कुछ, अन्यथा मरो, वही एक काम करो, और उनके पास कोई और दृष्टि नहीं। लेकिन किस लिए करो? आदमी करता किस लिए है? आदमी करता इसलिए है कि थोड़ी देर जी सके, और जीने का क्या मतलब होगा? फिर जीने का मतलब उत्सव होगा। हम काम भी इसलिए कर सकते हैं कि किसी क्षण में हम नाच सकें, लेकिन काम इतने जोर से पकड़ लेता है कि फिर नाचने का तो मौके नहीं आता, गीत गाने का मौके नहीं आता, बांसुरी बजाने की फुर्सत कहाँ रह जाती, दफ्तर से घर है, घर से दफ्तर है, घर दफ्तर आ जाता है दिमाग में बैठ के, दिमाग में बैठ के घर दफ्तर पहुंच जाता है, सब गडमड हो जाता है, सब उलझ जाता है, फिर जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं इस आशा में कि किसी दिन वो क्षण आएगा जिस दिन विश्राम करेंगे और आनंद ले लेंगे, वो क्षण कभी नहीं आता, वो आएगा ही नहीं। काम वाले वृत्ति वाले आदमी को वो क्षण कभी नहीं आता। कृष्ण जीवन को देखते हैं उत्सव की तरह, महोत्सव की तरह, एक खेल की तरह, एक क्रीड़ा की तरह, जैसा कि फूल देखते हैं, जैसा कि पक्षी देखते हैं, जैसा कि आकाश के बादल देखते हैं, जैसा कि मनुष्य को छोड़कर सारा जगत देखता है, उत्सव की तरह। कोई पूछे इन फूलों से कि खिलते किस लिए हो, काम क्या है, बेकाम खिले हुए हो। तारों से कोई पूछे कि चमकते किस लिए हो, काम क्या है। पूछे कोई हवाओं से बहते क्यों हो, काम क्या है। मनुष्य को छोड़कर जगत में काम कहीं भी नहीं है, मनुष्य को छोड़कर जगत में महोत्सव है, उत्सव चल रहा है प्रतिपल। कृष्ण इस जगत के उत्सव को मनुष्य के जीवन में भी ले आते हैं। वे कहते हैं मनुष्य का जीवन भी इस उत्सव के साथ एक हो जाए। ऐसा नहीं है कि उत्सव में काम नहीं होगा, ऐसा नहीं कि हवाएं नहीं दौड़ रही, दौड़ रही। ऐसा नहीं है कि चांद तारे नहीं चल रहे, चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि फूलों को खिलने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन करना गौण हो जाता है, होना महत्वपूर्ण हो जाता है, डूइंग पीछे हो जाती है, बीइंग पहले हो जाता है। उत्सव पहले हो जाता है, काम पीछे हो जाता है, काम सिर्फ उत्सव की तैयारी हो जाता है। दुनिया की सारी आदिम जातियों के पास अगर हम जाएं तो वे दिन भर काम करते हैं ताकि रात नाच सके, रात ढोल बजे और गीत हो। लेकिन सभ्य आदमी के पास जाएं तो वो दिन भर काम करता है, रात भर काम करता है। उससे कोई पूछे कि वो काम किस लिए कर रहा है, वो कहता है कल विश्राम कर सके, विश्राम को पोस्टपोन करता है, काम को करता चला जाता है, फिर वो कल कभी नहीं आता। तो मैं तो कृष्ण के इस महोत्सववादी रुख से राजी हूं, फिर मेरा देखना यह है कि इतना काम करके भी आदमी कर क्या लिया है। अगर काम करना अपने में ही लक्ष्य है तब तो बात दूसरी है, लेकिन इतना काम करके हमने कर क्या लिया है। सिसिफस की कहानी है कि देवताओं ने उसे श्राप दिया है कि वे पत्थर की चट्टान को पहाड़ पर चढ़ा के ले जाए, और जब वो पीक पर चोटी पे पहुंचेगा तो पत्थर फिर खिसल के नीचे चला जाएगा, सिसिफस फिर नीचे जाए, फिर पहाड़ तक खींचे, वो फिर नीचे चला जाएगा, सिसिफस फिर नीचे जाए। वो सिसिफस नीचे से ऊपर तक खींचता है, बड़े काम में लगा रहता है, पहाड़ पर पहुंचता है, फिर पत्थर नीचे खिसक जाता है, फिर वो नीचे आता है, फिर वो पत्थर को ऊपर चढ़ा देता है। काम वाले आदमी की जिंदगी सिसिफस की जिंदगी हो जाती है, चढ़ाता रहता है पत्थरों को, पत्थर गिरते रहते हैं वो चढ़ाता रहता है, कभी चढ़ाने में लगा रहता है, कभी नीचे गए पत्थर को दौड़ के पकड़ने में लगा रहता है। बाकी पूरी जिंदगी में वो क्षण नहीं आता जब विराम हो, विश्राम हो, उत्सव हो, वो हो नहीं सकता। इन काम करने वाले लोगों ने सारी दुनिया को मैड हाउस बना दिया, बिल्कुल पागलखाना कर दिया। हर एक एक आदमी पागल हो गया, सब दौड़े जा रहे हैं कि कहीं पहुंचना है। ये मत पूछो, मैंने सुना है एक आदमी के बाबत कि वो तेजी से टैक्सी में सवार हुआ और उसने कहा जल्दी चलो, टैक्सी वाले ने जल्दी टैक्सी चला दी। थोड़ी देर बाद उसने पूछा कि लेकिन चलना कहाँ, उसने कहा ये सवाल नहीं है, सवाल जल्दी चलने का है। हम सब जिंदगी में ऐसी सवार है, जल्दी चलो, कहाँ जा रहे हैं आप, सब चिल्ला रहे हैं हरी अप, लेकिन कहाँ, जोर से करो जो भी कर रहे हो, लेकिन क्यों, क्या होगा इसका फल, क्या पाने की इच्छा है, उसका कुछ पता नहीं, लेकिन इतना समय भी नहीं कि इसको सोचे, नहीं इतने में देरी हो जाएगी, पड़ोसी आगे निकल जाएगा, हम सब भागे जा रहे हैं। काम करने वाले लोगों ने, ये अति कामवादी जिनको दिखाई पड़ता है कि काम ही सब कुछ है, इन्होंने भारी नुकसान पहुंचाए। एक नुकसान तो इन्होंने पहुंचाया है कि जिंदगी से उत्सव के क्षण छीन लिए, दुनिया में उत्सव कम होते जा रहे हैं, रोज कम होते जा रहे, उत्सव के जगह मनोरंजन आता जा रहा है जो कि बहुत भिन्न बात है, उत्सव की जगह मनोरंजन आ रहा है जो बिल्कुल भिन्न बात। उत्सव में स्वयं सम्मिलित होना पड़ता है, मनोरंजन में दूसरे को सिर्फ देखना पड़ता है। मनोरंजन पैसिव है, उत्सव बहुत एक्टिव है। उत्सव का मतलब है हम नाच रहे हैं, मनोरंजन का मतलब कोई नाच रहा, हमने चाराने दिए और देख रहे हैं। लेकिन कहां नाचने का आनंद और कहां नाच देखने का आनंद, इतना काम हमने कर लिया है कि सांस थक जाते हैं तो किसी को नाचते हुए देखना चाहते हैं। कहीं कामू ने कहीं एक बात लिखी है कि जल्दी वो वक्त आ जाएगा कि आदमी प्रेम भी अपने नौकरों से करवा लिया करेंगे, तो फुर्सत भी तो चाहिए, काम से फुर्सत कहाँ है, एक नौकर रख लेंगे घर में कि तू प्रेम का काम कर दिया करे, क्योंकि मुझे तो फुर्सत नहीं होती, इतना काम में लगा हुआ हूँ कि ये प्रेम का गोरख धंधा, प्रेम तो उत्सव है, प्रेम से कुछ फल तो निकलता नहीं आगे, अपने में ही जो है तो इसको कौन कौन करेगा, काम वाले लोग नहीं करेंगे, इसके लिए तो एक सेक्रेटरी रखा जा सकता है जिसको निपटा लेगा। काम की अति दौड़ ने उत्सव के क्षण गंवा दिए, और उत्सव से जो पुलक आती थी जीवन में, जो थिरक आती थी, वो खो गई। इसलिए कोई आदमी प्रसन्न नहीं है, प्रमुदित नहीं है, खिला हुआ नहीं है। इसका सब्स्टिट्यूट हमें खोजना पड़ा, मनोरंजन, क्योंकि कोई तो क्षण चाहिए जब हम कुछ ना करें, विराम में हो, लेकिन हम जो मनोरंजन खोजे हैं वो उधार उत्सव है, दूसरा कर रहा है उत्सव हम देख रहे हैं, वो ऐसे ही जैसे कोई प्रेम कर रहा और हम देख रहे हैं। फिल्म में आप क्या कर रहे हैं, कोई प्रेम कर रहा आप देख रहे हैं, कृपा करें आप ही प्रेम करें। इससे कुछ ये सब्स्टिट्यूट काम ना करेगा, ये बिल्कुल झूठा है, कागजी है, इससे कोई हल होने वाला नहीं। इससे आप ख्याल में होंगे कि काम हो गया, लेकिन आपकी वो जो प्रेम की आकांक्षा थी वो नहीं तृप्त होगी, वो और भूखी हो जाएगी और प्यासी हो जाएगी। कृष्ण उत्सववादी है, वो जीवन को एक महालीला, एक महाउत्सव की तरह लेते। इन काम करने वालों ने जगत को कोई फायदा पहुंचाया हो ऐसा तो नहीं दिखाई पड़ता, जगत को उलझाया बुरी तरह, जटिल बहुत कर दिया, और इतना जटिल हो गया वो कि आदमी उसमें जी सके ठीक से ये भी कठिनाई मालूम होने लगी। ये भी ठीक है कि अगर हम राम के भक्तों को देखें, हनुमान को देखें, तो वे बड़े कर्मठ, निष्ठावान, ब्रह्मचारी, शक्तिशाली, वो सब दिखाई पड़ते हैं। कृष्ण का भक्त वैसा नहीं दिखाई पड़ता। मीरा है, नाचती है, गाती है, लेकिन वो बात नहीं दिखाई पड़ती, वो दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि राम जिंदगी को काम की तरह देखते हैं, कृष्ण जिंदगी को उत्सव की तरह देखते हैं। उत्सव की तरह देखना बात ही और है, लेकिन अगर आपको चुनाव करना पड़े कि हनुमान के साथ 24 घंटे रहना कि मीरा के साथ, थोड़ा सोचना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि हनुमान से अगर छुट्टी रहे तो ठीक है। इनका करिएगा क्या, इनके साथ 24 घंटे गुजारना एक कमरे में मुश्किल हो जाए। मीरा के साथ 24 जिंदगी भी गुजारी जा सकती, ये भी सच है कि कृष्ण का भक्त, कृष्ण को प्रेम करने वाला, वो जो आउटर एक्टिविटी है, वो जो एक्सट्रोवर्शन, वो जो बहिर्मुखता है, उससे धीरे धीरे हटता जाता है, वो किसी भीतरी गहरे रस में डूबता जाता है, डूबेगा, क्योंकि उसे दिखाई पड़ता है कि तुम बड़ा अद्भुत खो रहे हो ना कुछ के लिए। और जिस दिन दुनिया में मीराएं बढ़ जाएं, उस दिन दुनिया में बड़ी शांति होगी, हनुमान बढ़ जाएं तो बड़ा उपद्रव होगा, गांव गांव अखाड़े खुल जाएंगे और जगह जगह उपद्रव होने से एक आध हनुमान चल सकते एक आध गांव में, ज्यादा नहीं चलते। मीरा का तारतम्य, मीरा का संबंध जीवन के बहुत गहरे तलों से है। हनुमान बेचारे काम करने वाले एक सेवक है, एक वॉलंटियर है, वॉलंटियर को जैसा होना चाहिए वैसे वो हैं। वो किसी के लिए जी रहे हैं, काम में लगे हैं, धुन के पक्के हैं, सेवक हैं, वो सब ठीक है, लेकिन मीरा के आनंद की धुन बीइंग की धुन है, डूइंग की नहीं। वो कुछ करने का मजा नहीं है, होने का क्षण का मजा है, होना ही आनंदपूर्ण है। और अगर गीत वो गा रही है तो गीत गाना काम नहीं है, उसके होने के आनंद से निकली हुई अभिव्यक्ति है। वो इतने आनंद में है कि उससे गीत ही निकल सकता है। तो मैं तो गीत से भरे, नृत्य से भरे, उत्सव से भरे। और ये जो हमने, जिसको हम बाहर का जगत कहते हैं, काम की जो दुनिया है, इस काम की दुनिया का इतना ही उपयोग है कि हम इसमें इतने दूर तक हों जितने दूर तक भीतर जाने के लिए जरूरी हो, इससे ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। और रोटी कमानी पड़ेगी, लेकिन रोटी कमाना जिंदगी नहीं है, रोटी कमानी ही इसलिए पड़ती है कि कमा लिया फिर जिए। लेकिन कुछ लोग रोटी पर रोटी का ढेर लगाते चले जाते, वो खाना भूल ही जाते, जब तक रोटियां इकट्ठी हो पाती तब तक भूख भी मर चुकी होती है, क्योंकि इतने दिन खाया नहीं, तब वो अचानक खड़े रह जाते हैं कि क्या करें। सिकंदर हिंदुस्तान आता था तो वो डायोजनीस से मिला था, डायोजनीस ने उससे पूछा था कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो। सिकंदर ने कहा कि पहले मुझे एशिया माइनर जीतना है। डायोजनीस ने कहा कि समझा, फिर क्या इरादा है। उसने कहा हिंदुस्तान जीतना, फिर उसने कहा सारी दुनिया जीतना। डायोजनीस ने पूछा फिर, वो ऐसा रेत पर लेटा था, सुबह धूप निकली थी, नग्न रेत पर पड़ा था। उसने कहा फिर, सिकंदर ने कहा कि फिर तो विश्राम का इरादा है, तो डायोजनीज खूब खिलखिला के हंसने लगा और पीछे माद में उसका कुत्ता जो उसका साथी था उसने उसे आवाज दी कि सुन इधर आ। पागल सिकंदर को देख, हम अभी आराम कर रहे हैं, ये इतना उपद्रव करके आ रहे हैं। और सिकंदर से डायोजनीज ने कहा, अगर आखिर में आराम ही करना है, आओ लेट जाओ नदी पर, जगह यहाँ काफी, हम दोनों समा जाएंगे। और मैं आराम कर ही रहा हूं सिकंदर, इतना करके आराम ही करने का इरादा है ना, तो आराम तो अभी किया जा सकता है। सिकंदर ने कहा, बात तो तुम्हारी जस्ती, लेकिन अभी नहीं कर सकता हूं, पहले सब जीत लूं। पर डायोजनीज ने कहा कि जीत से और विश्राम का क्या संबंध, क्योंकि हम बिना जीते कर रहे हैं। सिकंदर ने कहा, बात तो जस्ती, लेकिन अब तो मैं निकल चुका यात्रा पर, आधा नहीं लौट सकता। तो डायोजनीज ने कहा, आधे ही लौटोगे, किसकी यात्रा कब पूरी होती। और यही हुआ, हिंदुस्तान से लौट के सिकंदर वापस यूनान नहीं पहुंच पाया, बीच में ही मर गया। सब सिकंदर मर जाते, आधी यात्रा पे मर जाते, रोटियां इकट्ठी हो जाती, खाने का वक्त नहीं आता, सात सामान इकट्ठा हो जाता है, बजाने का वक्त नहीं आता, साज ठोंक पीट के ठीक कर लिया जाता है, लेकिन जब तक ठोंक पीट पूरी होती तब तक हाथ शून्य हो चुके होते, फिर कुछ करने को नहीं बचता। नहीं, जीवन को तो लेना पड़ेगा उत्सव से ही, वही जीवन की धुने। आपसे कोई पूछे गहरे में, आप ही अपने से पूछे कि आप जो कर रहे हैं वो जीने के लिए कर रहे हैं कि करने के लिए जी रहे हैं, तो आपको उत्तर साफ हो सकेगा और तब आपको कृष्ण बहुत निकट मालूम पड़ेंगे। आप जीने के लिए कर रहे हैं सब कुछ, करने के लिए नहीं जी रहे हैं। और अगर जीने के लिए कर रहे हैं सब कुछ, तो फिर ठीक है, उतना ही करना काफी है जितने से जिया जा सके, ज्यादा क्यों करना, उसका कोई अर्थ नहीं। स्वभावतः अगर ये वृत्ति फैल जाए तो बहुत से उपद्रव बंद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से उपद्रव हमारे अत्यधिक करने से पैदा हो रहे हैं। दुनिया ज्यादा शांत, ज्यादा आनंद मग्न, ज्यादा प्रफुल्लित, ज्यादा प्रमुदित होगी। निश्चित ही कुछ बातें चली जाएंगी, चिंताएं चली जाएंगी, तनाव चले जाएंगे, पागलखाने चले जाएंगे, हजारों मानसिक बीमारियां चली जाएंगी, ये जरूर नुकसान होगा, इतनी चीजें चली जाएंगी। इसलिए मैं तो कहूंगा कि मैं कृष्ण के उत्सववादी चित्त के साथ राजी हूं। हाँ, ये भी सोचने जैसा है कि मीरा के हाथ में जो तंबूरा आया वो कर्म करने वाले लोगों की वजह से आया कि उत्सव मनाने वाले लोगों की वजह से आया। तंबूरा कर्म करने वाले पैदा नहीं करते, कुदाली बनाते, तंबूरा नहीं बनाते। तंबूरे का कर्म से कोई लेना देना नहीं, कुदाली बनाते, कुल्हाड़ी बनाते, तलवार बनाते, तंबूरा बनाने से कर्म करने वाले का क्या लेना देना। तंबूरा तो बनाते ही वे लोग हैं जो जिंदगी को खेल की तरह ले रहे हैं। जिंदगी में जो भी श्रेष्ठ आया है, चाहे तंबूरा हो चाहे ताजमहल हो, वो उन लोगों के मन से आता है, उन लोगों के सपनों से आता है जो जिंदगी को एक उत्सव बना रहे हैं। स्वभावतः ये उत्सव बनाने वाले लोग भी उन लोगों का उपयोग करेंगे जो जिंदगी को काम समझे हुए इस, लेकिन जो लोग उसे काम समझ के कर रहे हैं वे भी चाहते तो उत्सव समझ के कर सकते थे। मैं मानता हूं कि आप ताजमहल को देख के जितने आनंदित होते हैं उतना ताजमहल की ईंट रखने वाले मजदूर आनंदित नहीं हुए, वो काम कर रहे थे। जिन्होंने ताजमहल बनाया था वे उतने आनंदित नहीं थे, उनके लिए वो काम था। लेकिन क्या वजह, क्या ईंट उत्सव की तरह नहीं रखी जा सकती। मैं एक कहानी निरंतर कहता हूं कि एक मंदिर बन रहा है और एक आदमी वहां से गुजरा है और उसने पत्थर तोड़ते एक आदमी से मजदूर से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। तो उस आदमी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और क्रोध से कहा कि अंधे तो नहीं हो, देखते नहीं कि पत्थर तोड़ रहा हूं, आंखें हैं कि नहीं। वो आदमी आगे बढ़ा, उसने दूसरे मजदूर को पूछा, हजारों मजदूर पत्थर तोड़ रहे हैं, उसने दूसरे से पूछा कि मेरे मित्र क्या कर रहे हो। उस आदमी ने उदासी से अपनी छेनी हथौड़ी नीचे रख दी, उस आदमी की तरफ देखा और कहा कि दिखाई तो यही पड़ रहा है कि पत्थर तोड़ रहा हूँ, ऐसे रोटी कमा रहा हूँ बच्चों के लिए, बेटों के लिए, पत्नी के लिए रोटी कमा रहा हूँ। उसने फिर अपना तोड़ना शुरू कर दिया। वो आदमी तीसरे आदमी के पास पहुंचा जो मंदिर की सीढ़ियों के पास पत्थर तोड़ रहा था और गीत भी गा रहा था। उसने उससे पूछा कि क्या कर रहे हो। उसने कहा क्या कर रहा हूँ, भगवान का मंदिर बना रहा हूँ। उसने फिर पत्थर तोड़ना शुरू कर दिया और गीत गाना शुरू कर दिया। ये तीनों आदमी एक ही काम कर रहे हैं, तीनों पत्थर तोड़ रहे, लेकिन इन तीनों का सोचने का ढंग पत्थर तोड़ने के बाबत भिन्न। वो जो तीसरा आदमी पत्थर तोड़ने को उत्सव बना लिया। मैं नहीं कहता हूं कि लोग गरीबी न मिटाएं, मैं नहीं कहता हूं कि लोग यंत्र न बनाएं, मैं नहीं कहता हूं कि लोग समृद्धि पैदा न करें, लेकिन इस सबको भी उत्सव की तरह, इस सबको भी काम की तरह नहीं। गरीबी अगर काम की तरह मिटाई गई तो हो सकता है गरीबी तो मिट जाए, लेकिन गरीब आदमी दुनिया से नहीं मिटेगा। लेकिन अगर गरीबी उत्सव की तरह मिटाई गई तो हो सकता है गरीबी उतने जल्दी शायद ना भी मिटे, लेकिन गरीब आदमी मिट सकता है। हम जो कर रहे हैं उसके प्रति हमारा एटीट्यूड क्या है, वो सवाल है। और जब इस एटीट्यूड का, इस भाव का परिवर्तन होता है तो हमारी सारी गतिविधि बदल जाती है। एक माली भी सुबह आके इस बगीचे में काम करता है, लेकिन इसे उत्सव की तरह नहीं ले पाता। कौन उसे रोक रहा है कि उत्सव की तरह ना ले। माना कि वो रोटी कमा रहा है, रोटी बराबर कमा रहा है, कमाए, लेकिन ये खिलते हुए फूलों को उत्सव की तरह ना ले, ये कौन रोक रहा है? और इनको उत्सव की तरह ना ले के वो कौन सा ज्यादा कमा ले रहा है? मैं तो मानता हूं कि अगर वो इसको आनंद की तरह ले, इसको काम तो है ही, रोटी कमा ही रहा है, वो गौण है, लेकिन उसके चित्त में प्रमुख अगर ये फूलों का आनंद और उनके खिलने की खुशी हो जाए तो वो माली सिर्फ नौकर नहीं रह जाएगा, वो बहुत गहरे अर्थों में इन फूलों का मालिक भी हो जाएगा, बिना मालिक बने। और जब ये फूल खिलेंगे तब उसे एक आनंद भी मिलेगा जो अकेले काम से कभी भी नहीं मिल सकता है। गरीबी भी मिटानी है, दुख भी मिटाना है, लेकिन वो काम की भांति नहीं, वो भी जीवन के उत्सव में सब लोग सम्मिलित हो सके। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि गरीबी मिटानी है तो मेरा मतलब बहुत ज्यादा ये नहीं होता कि गरीब बहुत तकलीफ में इसलिए मिटानी है। मेरा मतलब इतनी होता है कि गरीब रहते हुए जीवन के महोत्सव में भागीदार होना बहुत मुश्किल है, इसलिए मिटानी है। मैं जब गरीब की गरीबी मिटाना चाहता हूँ तो मेरे लिए मतलब इतने नहीं कि उसका पेट खाली है वो भर दिया जाए किसी तरह, ना, मेरे मन में ख्याल ये है कि उसकी आत्मा को भरना मुश्किल पड़ेगा जब तक पेट नहीं भर जाता। और उसकी आत्मा तो उत्सव से भरेगी, पेट काम से भरेगा। और आत्मा की तरफ अगर ध्यान हो तो हम जीवन के सब कामों को उत्सव बना ले सकते हैं। उस खेत में हम गड्ढे भी खोद सकते हैं और गीत भी गा सकते हैं, सदा से ऐसा था ही। आज फैक्ट्री उतनी आनंदपूर्ण नहीं रह गई, लेकिन आज नहीं कहीं कल मैं आपसे कहता हूं कि फैक्ट्री में गीत वापस लौटेगा। किसान अपने खेत पे काम कर रहा था, वो काम तो था ही, लेकिन वो गीत भी गा रहा था। उसके गीत की वजह से काम में बाधा नहीं पड़ती थी, काम में सिर्फ गति आती थी। लेकिन फैक्ट्री में तो गीत गाने की सुविधा नहीं है, वहां सिर्फ काम रह गया 7 घंटे। आदमी थका हुआ लौट आता है, टूटा हुआ लौट आता है, आज नहीं कल। और जिन मुल्कों में इस पर काम चलता है, खोज होती है, वो मुल्क इसके करीब आते जा रहे हैं कि फैक्ट्री में जो आदमी काम कर रहा है अगर अकेला काम ही रहेगा तो खतरा है बहुत, इसके काम को आनंद में रूपांतरित करना होगा। बहुत दिन दूर नहीं जबकि फैक्ट्री में भी गीत गाया जा सके और उत्सव के लिए क्षण खोजे जा सके, खोजने ही पड़ेंगे, अन्यथा आदमी उदास और रिक्त होता चला जाएगा। एक स्त्री घर में खाना बना रही, वो खाना ऐसे भी बना सकती है जैसा होटल में रसोईया बनाता है, तब काम हो जाएगा। वो खाना ऐसे भी बना सकती है जब कोई अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करता और खाना बनाता, तब काम उत्सव हो जाएगा। उत्सव थकाएगा नहीं और भरा पूरा छोड़ जाएगा, काम तोड़ जाएगा, खाली रिक्त कर जाएगा, और दोनों हालत में काम होता है। इसलिए मैंने ऐसा कहा, मैंने कहा कि कृष्ण चित्त के पार हो गए थे। इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण का चित्त नहीं रह गया था। चित्त के पार होने का मतलब इतना ही है कि चित्त के पार जो है कृष्ण उसे भी जान गए, पहचान गए थे। चित्त तो था ही, समाहित था। कृष्ण का व्यक्तित्व चित्त से बड़ा व्यक्तित्व हो गया था, उसमें चित्त की भी जगह थी। चित्त के पार हो जाने के दो अर्थ हो सकते हैं। चित्त की दुश्मनी में पार हो गए हो तो चित्त कट के अलग टूट जाता है, लेकिन अगर चित्त की मैत्री में पार हुए हैं तो चित्र सम्मिलित होता है, समाहित होता है। इस बड़ी घटना में जो चित्त के पार घट रही है, चित्त भी अपना हिस्सा रखता है, वो भी अपनी जगह होता है। जब मैं कहता हूं कि मैं शरीर के पार हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं शरीर नहीं रह गया। इसका केवल इतना ही मतलब है कि मैं सिर्फ शरीर नहीं रह गया, शरीर तो हूं ही, और भी कुछ हूं, समथिंग एडिट, समथिंग प्लस। शरीर कट नहीं गया, कुछ और भी जुड़ गया। कल तक मैं सोचता था शरीर ही हूं, अब मैं जानता हूं कि और भी कुछ हूं, शरीर तो हूं ही। वो जो और कुछ है उसने शरीर के होने को मिटा नहीं डाला, और रिच और समृद्ध कर दिया, आत्मा भी हूं। और जब कोई व्यक्ति जानता है परमात्मा को भी, तो ऐसा नहीं कि आत्मा मिट जाती, तब वो ये जानता है कि परमात्मा भी हूं। और आत्मा और शरीर और चित्त सब उस बड़े विराट में समाहित होते चले जाते, कुछ खोता नहीं, जुड़ता जाता है। तो कृष्ण को जब मैं कहता हूं चित्त के पार हो गए थे, तो मेरा मतलब यह है कि उन्होंने उसे भी जान लिया था जो चित्त के पार फैला है। लेकिन चित्त तो वो थे ही, वो दुश्मन नहीं है चित्त के, वो चित्त के शत्रु नहीं है, उससे लड़के पार नहीं हो गए थे, उसको जी के पार हो गए थे। और इसलिए जब मैं कहता हूं कि उनकी सहज चित्त से जो उठा था वो हुआ था, तो मेरा मतलब यही है कि अब उनके भीतर सब सहज ही हो सकता है। चित्त में असहज तभी तक होता है जब तक चित्त के भीतर हमारी लड़ाई होती है। एक हिस्सा कहता है करो, एक कहता है मत करो, तब लड़ाई होती है, तब चीजें असहज हो जाती है। जब पूरा चित्त इकट्ठा होता है तो जो होना होता है वो हो जाता है, जो नहीं होना होता वो नहीं होता है, तब सहज होता है। लेकिन ये बात बहुत अच्छी पूछी कि फिर पशुओं में उनमें फर्क क्या रह जाए? एक हिसाब से बिल्कुल नहीं, एक हिसाब से बहुत ज्यादा, एक हिसाब से बिल्कुल नहीं। पशु भी सहज हैं, लेकिन बिना जानते हुए, बेहोशी में। कृष्ण भी सहज हैं, लेकिन जानते हुए, होश में। सहजता समान, बोध भिन्न है। पशु भी सहज हैं, जो हो रहा हो रहा है, लेकिन इसका पशुओं को कोई बोध नहीं है कि जो हो रहा है वो हो रहा है। इसकी कोई अवेयरनेस, इसकी कोई प्रज्ञा नहीं, यंत्रवत हो रहा है। कृष्ण को जो हो रहा है इसका साक्षी भी पीछे खड़ा है, जो देख रहा है कैसा हो रहा है। पशु के पास साक्षी नहीं है। कृष्ण चित्त के पार चले गए हैं, पशु अभी चित्त के पहले है। कृष्ण चित्त के बियॉन्ड, पशु चित्त के बिलो। अभी पशु के पास चित्त भी नहीं है, अभी पशु के पास शरीर ही है, इंस्टिंक्ट है, अभी वृत्तियां हैं, और वो यंत्रवत काम करा रही है, वो काम कर रहा है। अभी पशु के पास चित्त भी नहीं है, इसलिए चित्त के पार जो गया है उसमें और चित्त के नीचे जो है एक तारतम्य होगा। बहुत पुरानी फकीरों में एक कहावत है कि जब कोई परम ज्ञान को उपलब्ध होता है तो परम अज्ञानी जैसा हो जाता है। उसमें थोड़ी सच्चाई है, क्योंकि परम अज्ञानी में, जैसा हम जड़ भरत को जानते हैं, अब जड़ भरत नाम दिया उस परम ज्ञानी को, लेकिन हो गया वो जड़ जैसा। एक अर्थ में जो पूर्ण ज्ञान है वो पूर्ण अज्ञान जैसा मालूम पड़ेगा, कम से कम पूर्णता तो समान है। एक बात वो दोनों में, ज्ञान में भी कोई बेचैनी नहीं रह गई क्योंकि सब जान लिया गया, अज्ञान में कोई बेचैनी नहीं क्योंकि अभी कुछ जाने नहीं गया। बेचैनी होने के लिए कुछ तो जाना जाना चाहिए। पशु जो हो रहा है हो रहा है, इसका उसे कोई बोध नहीं है। कृष्ण जो हो रहा है हो रहा है, बोध पूरा है, ये अबोध में नहीं हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं जब संत अपने पूरे पूरे व्यक्तित्व को उपलब्ध होता है तो बच्चों जैसा हो जाता है। जीसस से कोई पूछता है कि आपके प्रभु के राज्य में क्या होगा, या जो आदमी प्रभु को उपलब्ध हो जाए वो कैसा होगा, तो जीसस कहते हैं वो व्यक्ति जो प्रभु को उपलब्ध हो जाएगा बच्चों जैसा होगा। लेकिन जीसस ये नहीं कहते कि बच्चे उसको उपलब्ध हो गए, नहीं तो सभी बच्चे उपलब्ध हो गए हो न। वो कहते हैं बच्चों जैसा, बच्चा नहीं, बच्चों जैसा, जस्ट लाइक चिल्ड्रन। अगर वो कहें कि बच्चे बच्चा हो जाएगा तो फिर बच्चे तो बच्चे हैं ही, फिर इतना उपद्रव की क्या जरूरत है। नहीं, बच्चा अभी नीचे है, बिलो है, वो बियॉन्ड होगा। बच्चे को अभी तनाव में जाना पड़ेगा, वो तनाव में जाके निकल चुका है। बच्चा अभी पोटेंशियली सब बीमारियां लिए हुए है, वो सारी बीमारियों के पार हो गया। अभी पशु को वो सारी बीमारियों से गुजरना पड़ेगा जो आदमी की है, और कृष्ण उन सारी बीमारियों के पार गुजर गए। इतना फर्क है और इतनी समानता भी।
इसके साथ ही हम आज के प्रोग्राम की समाप्ति की ओर हैं। आज के प्रोग्राम में म्यूजिक स्वामी रंजन, देवा प्रेमल, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और मिलर रिपा की एल्बम से लिया गया है। ओशो के प्रेमपूर्ण उत्सव में जीवन की ढेरों शुभकामनाओं के साथ हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
Celebrate, celebrate, celebrate this ecstasy. Celebrate, celebrate, celebrate this ecstasy. All the stars that shine in the galaxies, every blade of grass, the mountains and the trees. Celebrate, celebrate, celebrate this ecstasy. Celebrate, celebrate, celebrate this ecstasy. Like the sunrise in the morning, as the darkness disappears, joy is rising up inside me, and love is melting every fear.